أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد تو ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ ریلیٹ کرتا ہے توحید سے، توحید در قرآن، جیسا کہ دوسرا جو اگلے جمعہ کا ہے وہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں سے متعلق۔ تو ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں جیسا میں نے کہا تھا کہ تقریباً ہماری جو گفتگو عرصے تک 10-11 سال تک الحمدللہ چلی، تو اس کے تقریباً آخر میں میں نے اس توحید کے موضوع کو لیا، کیونکہ توحید ویسے تو آپ کہیں کہ عقائد اور اصول میں اہم ترین ہے اور بنیادی ترین ہے، لیکن سمجھنے کے حوالے سے سب سے زیادہ ذہنی قوت اور معرفت کی طاقت طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ عقیدہ توحید بیسیکلی پیراڈاکسیکل ہے، یعنی کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جمع ہوتی ہیں اس عقیدے میں جو ایک دوسرے سے لگتا ہے کہ اپوزٹ ہیں، اپوز کر رہی ہیں، متضاد ہیں، اور ان میں سے ہی ایک پہلو پر انشاءاللہ آج بھی ہم بات کریں گے، اس پر بات کرنا شروع کریں گے۔ تو اس وجہ سے توحید، یعنی اگر کہا جائے کہ تمام عقائد میں، تمام بلیفس میں سب سے کمزور ہے عقیدہ، سب سے کمزور پلر توحید کا ہی ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو ایک بنیادی مضبوطی اور فکری قوت چاہیے ہوتی ہے، اس میں بھی زیادہ تر مسلمان لیک کرتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی کہ یہ تمام کی تمام باتیں اس لیے عرض کرنا ضروری ہیں تاکہ ہم اس بارے میں متوجہ رہیں کہ توحید باری تعالیٰ کو سمجھنا اور اس کی درست معرفت حاصل کرنا جو ہے نا، وہ گویا آپ کے ایمان کی پیک ہے، یعنی اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے اور اس کو صحیح طریقے سے آپ نے حاصل کر لیا، تو آپ نے گویا اپنے ایمان کا ایک کمال ہے اس کو پا لیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے، اور اس سے پہلے جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا کی شناخت مختلف طریقوں سے ممکن ہے، خدا کی شناخت تک لوگ الگ الگ رستوں سے جاتے ہیں، یعنی خدا کو پہچاننا، اور اس میں سب سے کم جس رستے پر چلنے والے لوگ ہیں وہ راہ ہے تہذیب نفس ہے، یعنی اپنے نفس کی ایسی تہذیب و تربیت کی جائے کہ انسان کا دل، قلب ایک آئینے کی مانند ہو جائے، اور خدا کا نور، ٹھیک ہے، خدا کا نور، یہ ہم کوئی ایسی یعنی یوں ہی ایک بات نہیں کرے، بلکہ خود قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور جس کو امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا اس آیت کے حوالے سے کہ یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کو آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ نور خدا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں اور زمین میں ہر شے روشن ہے اور ایک وجود رکھتی ہے۔ تو وہ نور انسان کے قلب پر میں ابزارب ہو اور وہاں سے ریفلیکٹ ہو، اس رستے پر چلنے والے لوگ بہت کم ہیں، جو اپنی تہذیب نفس، تربیت نفس، اپنے قلب کی پاکیزگی اور طہارت کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس راہ پر چلنے والے لوگ بھی بہت کم ہیں کہ جو حقیقتاً راہ ولایت کہی جاتی ہے۔ یعنی راہ ولایت کے کیا مطلب ہے؟ کہ خدا کی معرفت محبت میں تبدیل ہو، اور یہ محبت انسان کو اپنی طرف کھینچے اور جذب کرے، اور انسان پھر اس محبت کے رستے سے خدا کی طرف بڑھے، اور خدا کی معرفت اور اس کی شناخت بڑھتی چلی جائے، اور جس کا اینڈ یہاں پہ جا کے ہوتا ہے کہ جس کو بزرگان کہتے ہیں فنا فی اللہ کی منزل، فنا فی اللہ اور بقا باللہ والی منزل۔ تو ان راہوں پر چلنے والے لوگ بہت کم ہیں، بلکہ اگر میں صحیح یہ جملہ استعمال کروں کہ ایون ان راہوں کو سمجھنے والے لوگ بھی بہت کم ہیں، कि ज़्यादातर मुसलमानों को के सामने जब ये सब बातें की जाती हैं तो वो उन्हें बहुत ही मतलब लगता है कि या तो चाइनीज़ ज़बान में बात हो रही है या किसी दूसरे सैारे सितारे की ज़बान में बात की जा रही है। यानी तकरीबन इसका इवन शऊर भी नहीं हो पाता हमारे पास कि हम ये बोल क्या रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल इन तमाम बातों का गुजारिश करना, इनको समझाना, इनको सामने लाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता कि खुदा किस वक्त किस इंसान को क्या तौफीक इनायत फरमा दे और किसके ऊपर कौन से दरवाजे खुल जाएं और कौन सी नूरानियत वाज़े हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली थी और पिछली दफ़ा हमने इस बात को भी देख लिया था कि शनाख्त मबदा, मबदा यानि सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, खुदा कौन है, सोर्स ऑफ लाइफ है, खुदा लाइफ है, मबदाए हस्ती, मबदाए वजूद, ओरिजिन ऑफ एग्जिस्टेंस, तो उसको पहचानना इंसान की फितरत का हिस्सा है। यानी इंसान खुद अपनी ज़ात में, अपने अंदर जो उसके ज़ात की बुनियाद है, वहाँ पर वो उस हस्ती को जानता और पहचानता है कि वो कौन है। और उसके लिए कुछ अलामतें बयान की जाती हैं, कुछ निशानियां बयान की जाती हैं, जिसमें से एक निशानी जो बहुत अहम है वो ये है कि हर शख्स एक ऐसे कमाल को चाहता है कि जिसमें बला और जवाल ना हो, और हर शख्स जिसको उसके पास कमाल का जो तसव्वुर है वो फ़क़त एक होता है। यानी इंसान जिस चीज़ को भी कमाल समझता है तो वो कमाल एक ही को समझता है, न कि मुख्तलिफ लोगों को। ठीक है, इसी वजह से हमारी लुगत में एक वर्ड आया है अफजल, अकमल। ठीक है, यानी क्या मतलब है कि अगर इवन हमें दो लोग या चीज़ें कमाल वाली नज़र भी आती हैं ना, तो भी हमारा जहन इस बात को कबूल करने पर आमादा नहीं होता कि दोनों को एक दर्जे पर रखें। वहाँ भी हम उनमें कंपैरिजन करके कहते हैं नहीं, ये उससे ज़्यादा बाकमाल है, ये उससे ज़्यादा बाफजीलत है। तो ये अफजल व अकमल वाले जो तसव्वुर हैं ये इंसान की उसी फितरी ख्वाहिश और उसी फितरी रुझान को बयान करता है कि इंसान की नज़र में फजल व बरतरी व कमाल फ़कत और फ़कत एक है। वो उसको वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये फितरत है इंसान की, और इंसान की फितरत में ये चीज़ मौजूद है कि जो इस बात का बज़ात खुद सबूत है कि हर शख्स उस हस्ती बाकमाल की तलाश में है, उसको ढूंढ रहा होता है, उसको अपने दिलोजान की गहराइयों से तलाश कर रहा होता है। अब ये कि वो कौन उस तलाश में कहाँ तक पहुँचता है ये एक अलग मसला है, और जैसा ज़ाहिरन देखने में मिलता है वो ये कि ज़्यादातर अफराद जो हैं वो इस तलाश में गुमराह हो जाते हैं। यानी गुमराह होने का क्या मतलब है कि वो कमाल को ऐसी जगह पर ढूंढना शुरू हो जाते हैं कि जहां हकीकतन वो कमाल पाया नहीं जाता। यानी मिसाल के तौर पर बहुत सारे अफराद जो हैं उस कमाल को शोहरत में ढूंढते हैं, दौलत में तलाश करते हैं, किसी खूबसूरत शक्ल में देख रहे होते हैं, एंड सो ऑन। और उसमें गुमराही की वजह क्या है, गुमराही की सबसे बड़ी दलील क्या है कि हर वो चीज़ जो फ़ानी हो जाए, जो आपका साथ छोड़ दे, जो आपके साथ बाकी ना रहे, वो आपके लिए कभी भी कमाल नहीं हो सकती। ठीक है, ये यानी कि ये वो गुमराही का पहलू है कि जिसकी तरफ बहुत कम लोगों की तवज्जो जाती है कि आप जिसको भी तलाश कर रहे हैं, जिसको भी ढूंढ रहे हैं, जो भी आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, चाहे दुनिया भर की दौलत आप जमा कर लें, पूरी दुनिया के आप हाकिम बन जाएं, लेकिन एक दिन उसने आपका साथ छोड़ना है। ठीक, आपको उससे अलग होना है। तो बहरहाल यानी ये हिदायत, इस हिदायत को क्या कहते हैं, ये हिदायत फितरी है, उस हकीकत की तरफ, उस हकीकत और सच्चाई को पाने के लिए कि जो हकीकत ज़िंदगी है, जो तमाम कायनात पर हाकिम है, जो वजूद असली है। अच्छा, उससे आगे बढ़ के जो अब अगला टॉपिक आता है वो ये आता है कि हम जब उस सोर्स ऑफ लाइफ या हकीकत ज़िंदगी या खुदा या इलाह या माबूद, जिस नाम से भी आप चाहें उसको पुकारें, याद करें, हम जब उसकी शनाख्त की तरफ, उसको पहचानने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उस शनाख्त की एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री को क्रॉस करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है पैराडॉक्स। ये मुश्किल मसला है, इसको समझना, इस जगह पर आना ये आसान नहीं है। यानी आप खुदा को शनाख्त कर सकते हैं, लेकिन हकीकत खुदा या ज़ात खुदा तक नहीं पहुंच सकते। आप इस जगह तक नहीं आ सकते कि आप कहें कि मैंने खुदा को देख लिया कि खुदा कैसा है, या मैंने उसकी ज़ात की हकीकत को जान लिया कि वो क्या है, उसके वजूद की हकीकत क्या है, या उसकी जितनी भी सिफात हैं वो सिफात उनकी हकीकत क्या है। सिफात क्या है ये तो हमें पता चल जाता है कि राज़िक है, रब है, खालिक है, लेकिन सिफात की हकीकत क्या है, ये सिफात निकल कहाँ से रही हैं, बरामद कहाँ से हो रही हैं, सिफात का ओरिजिन क्या है, इस तक किसी की रसाई नहीं। किसी का मतलब किसी, ठीक है, किसी का मतलब आम इंसान नहीं है, किसी का मतलब हर वली, हर नबी, इमाम, एवरीवन। ये मकाम किसी के लिए भी इस तक पहुंचना या उसका अहाता करना मुमकिन नहीं है। सही, तो ये यहां पर आने के बाद जो है ना, मामला थोड़ा एक दुश्वार गुजार हो जाता है कि थोड़ा इसको समझना। तो अब हम इंशाअल्लाह आज और शायद अगली दफ़ा हम इसी दो, क्योंकि इस पर जैसे मेरा मेन रेफरेंस तौहीद दर कुरान है, तो लजवादी अमली की तफसीर मौजूई, तो इस मौजू को उन्होंने भी काफ़ी तफसील से बयान किया, क्योंकि ये बहुत अहम है। और अगर यानी कि तौहीद में ये वाला पहलू कमज़ोर रह जाए तो इंसान लाजमन शिर्क में मुब्तला हो जाता है। अगर ये पहलू कमज़ोर रह जाए ना, और इस जगह पर हमारी जो मारिफत है वो क्लियर ना हो, तो फिर शिर्क में मुब्तला होना आप समझ लें लाजमी है। यानी या हम खुदा को अपने जैसा समझ लेंगे, या अपने आप को इतने बुलंद मकाम पर बिठा देंगे कि गोया खुदा के बराबर आ जाएं। दो में से एक मसला होगा। ठीक, तो इस चीज का समझना इस एतबार से बहुत जरूरी है कि ये चीज किसी के बस में नहीं है, और यानी कुव्वतें मखलूक से या इंसानी ताकत से ये मावरा है, बियॉन्ड है, कि वो ज़ात खुदा को जान सके या हकीकत सिफात खुदा तक पहुंच सके। अच्छा, इसमें फरमाते हैं कि इंसान जब किसी भी शनाख्त या इल्म और मारिफत के रास्ते पर आगे बढ़ता है, तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि दो तरीके होते हैं मेनली। एक तरीका होता है कस्ब और हुसूल वाला। कस्ब वाला मतलब क्या है कि आप इल्म गोया के हासिल करते हैं, कमाते हैं अपनी नॉलेज को, स्टेप बाय स्टेप करके आप आगे आगे बढ़ रहे होते हैं। ये वाला जो रास्ता है इल्म हुसूली और इल्म कस्बी वाला, ये तो आपको तकरीबन किसी भी शय की हकीकत तक नहीं पहुंचा सकता चेजाए के खुदा। सही, अभी मतलब कि मैं अगर इसको थोड़ा सा और वजाहत करूं तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि इल्मे यानी इल्मे हुसूली और कस्बी जो है ना, वो आपको किसी भी चीज की हकीकत तक नहीं ले जा सकता। जैसे आज की साइंस है, ज़ाहिरन साइंस जो है वो बहुत तरक्की याफ्ता हो चुकी है। साइंस ने यानी के अपनी जो भी उनकी दरियाफ्त है या जो भी उन्होंने थ्योरीज वगैरह डेवलप की हैं, उसके ज़रिए से उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी या वसाइल बिल्ड कर लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं, जो कि तकरीबन मिरेक्युलस हैं देखने में। लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या है कि ये साइंस जितनी चीज़ों को भी इस्तेमाल करती है, उनमें से किसी एक की हकीकत को भी नहीं जानती है। यानी कि बुनियादी तौर पर अगर आप कहें कि जैसे मैटर है, अब मैटर के पीछे कब से लगे हुए, पहले जो है मैटर क्या था, एक ऑब्जेक्ट होता था, फिर उसके बाद मैटर जो है जनाब एटम्स में तकसीम हो गया, एटम्स आ गए, फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में तो मतलब एटम की खुद बेतहाशा तकसीम हो गई। अब शायद आप लोगों को तकरीबन यानी इवन हमारे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये बात मेरा ख्याल अंदाज़ा नहीं होगी कि अब जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हैं वो एटम और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है। सही है, वो नहीं है जो तकरीबन 1970s के बाद से जो मॉडल बना है जिसे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ मैटर कहते हैं, वो बिल्कुल अब कुछ के कुछ हो गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है ये मसला हल नहीं हुआ है कि अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं कि बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो इस किस्म के हैं, तो वो एक लिहाज से वो मॉडल है, उसकी हकीकत नहीं पता, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो जो मॉडल हैं वो बिल्कुल ही बदल जाएं, वो कुछ कुछ और हो जाएं, ठीक है। ये हल मैटर का है। उसके बाद आपका जो भी मैटर है वो किसके ज़रिए से हरकत में आता है या किसके ज़रिए से काम करता है, एनर्जी के ज़रिए से। अब एनर्जी में आपका जो मेन एनर्जीज हैं जैसे लाइट है या इलेक्ट्रिसिटी है या मैग्नेटिज्म है या उनके कंबाइंड फॉर्म्स हैं, उसकी हकीकत का किसी को नहीं पता कि ये सब कहाँ से आती है, क्यों आती है, कैसे आती है। हाँ, आपको उसके इस्तेमाल का तरीका पता है, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये बात, ये हुनर आपने हासिल कर लिया, ठीक है। तो इल्म हुसूली और कस्बी जो है वो किसी भी चीज़ की हकीकत तक नहीं पहुंचाता आपको, वो एक दर्जे पर एक जगह पर आके रुक जाता है और वहां पर आके उसके बाद आप पे टामक टुइया ही मारते रहते हैं। और यानी जाहिर है कि मैं आप लोगों को उस तरफ ले जाऊंगा ना तो आप लोग परेशान भी होंगे और कोई फायदा नहीं है, वरना आप किसी से भी जाके पूछिएगा कि साइंटिफिक जितनी भी थ्योरीज है ना ये सब की सब इन फैक्ट वो मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं और लोगों को खुद भी नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। आई थिंक 1960s में एक नोबेल प्राइज विनर मैथमेटिशियन ही था, फिजिक्स और मैथमेटिशियन था मेनली, यूगिन विग्नर, उसने एक तकरीर की थी और वो टर्म उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आज तक बहुत पॉपुलर है, अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स। यानी आप जो है एक चीज़ बनाते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल जनरेट करते हैं और वो जो है ना वो फिजिकल वर्ल्ड में आके एप्लीकेबल हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। तो उसने कहा इसका कोई रीज़न हमारे पास नहीं है कि ऐसा कैसे होता है, अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस है ये। तो ये सारा का सारा जितना भी आपका निज़ाम है ना ये सब एक्चुअली मैथमेटिकल मॉडल हैं जो वर्क कर रहे हैं और जो उन्हें खुद भी नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में ये सारे मॉडल जो है ना बिल्कुल बदल के कोई और शक्ल इख्तियार कर लें। तो आप समझ रहे हैं ये इल्म उसूली का हाल है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि इल्म उसूली और कस्बी जो है ना वो ये है बस, इसके आगे कुछ नहीं। हकीकत को समझने के एतबार से ये मैं आ रहा है उसका। तो अब उसके बाद कौन सा इल्म रह गया, इल्म शुहूदी। इल्म शुहूदी का मतलब क्या है कि इंसान के दिल की आंखें खुलें, इंसान का वजूद रोशन हो। जैसा मैंने कहा कि उसका पहली मंजिल जो है, पहला रास्ता क्या है, तहजीब नफ्स है, तरबियत नफ्स है, तहारत रूह है, कि जिसकी बिना पर इंसान के दिल की आंखें खुलती हैं और वो दिल की आंखें बियॉन्ड द मैटर हकायक को पहले परसीव करती हैं और फिर देखने के काबिल हो जाती हैं और उनको देखना शुरू करती हैं। तो अब सवाल ये होता है कि क्या ये जो इल्म शुहूदी है यानी दिल की आंखों से जो कुछ इंसान देख पाता है, क्या वो इल्म शुहूदी हकीकत खुदा तक ले जा सकता है? وہاں تک پہنچا سکتا ہے علم شہودی. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خداوند ہویت نامتناہی وجودی است, یعنی خدا کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے, انفینٹ ہے, لامحدود ہے. وہستی نامحدود ہرگز در ہیت شہود موجود محدود واقع نمی شود. اور جو انفینٹ ہے وہ فائنائٹ کے شہود کے احاطے میں کبھی بھی نہیں سما سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. یعنی آپ کتنے ہی بلند ہو جائیں, آپ کا شہود کتنا ہی بلند ہو جائے, لیکن جو ہستی لامحدود ہے, جو انفینٹ ہے, نو باؤنڈریز جہاں پر ایگزسٹ کرتی ہیں, تو وہ یہ محدود اس نامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور احاطے کا ورڈ یعنی اس کو سراؤنڈ نہیں کر سکتا, سر انولپ نہیں کر سکتا. یہ احاطے کا ورڈ کیوں استعمال ہو رہا ہے, اس لیے کہ آپ کسی بھی شے کی حقیقت کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کی باؤنڈریز کا احاطہ کریں. ٹھیک ہے, اگر یہ ٹیبل ہے مثال کے طور پر, آپ کو اس کی باؤنڈریز نہ نظر آئیں, فقط ایک پھیلی ہوئی چیز نظر آئے, آپ اس کے بارے میں رائے دے ہی نہیں سکتے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, جب تک کہ اس کی باؤنڈریز آپ کی نظر میں نہ آئیں, اس کا پورا وجود آپ کی نظروں میں نہ سما جائے, اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں دے سکتے کہ میں اس کی حقیقت کو جانتا ہوں یا میں اس کو پہچانتا ہوں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایون علم شہودی کے لیے بھی یہ چیز ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہستی لامتناہی اور لامحدود ہے, اور جو شہود ہے چاہے وہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو وہ محدودیت کا حامل ہے. لیکن اس مطلب کا معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ ذات اقدس خدا شہود سے بالاتر ہے, نہ کہ شناخت اور معرفت خدا شہود سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تھوڑا سا وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, پیراڈاکس ہو جاتی ہیں. یعنی آپ ایک ذات کی معرفت نہیں رکھ سکتے لیکن اس کے باوجود اس ہستی کو آپ پہچان سکتے ہیں. کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس کی ان صفات کے ذریعے سے کہ جو خود مخلوقات میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ مثال کے طور پہ بتائیے کہ کون سی صفات ہیں خدا کی جو ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہیں. کتنی صفات آپ سمجھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں؟ جی, سمجھ کیسے سمجھتے ہیں؟
وہ اپنے آپ سے بھی بعض دفعہ احساس ہو جاتا ہے, اگر آپ کسی چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں تو آپ کو اندر سے احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ سمجھ کیا چیز.
لیکن سمجھ, ہاں سمجھیت جو ہے وہ ویسے بے نیازی نہیں ہے حقیقتا. جی, رازق, خالق, رب. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام کی تمام صفات جنہیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, بلکہ اپنی ذات میں دیکھتے ہیں, تو یہ صفات ہمارے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہیں خدا کو شناخت کرنے کا. اور اس شناخت کرنے میں جو مین ایجنسی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی عقل, آپ کا مشاہدہ. تو یعنی اسی وجہ سے پھر انسان کی اگر عقل کا معیار پست ہو یا انسان اپنی عقل اور قوہ فکری استعمال کرنے پر ہی آمادہ نہ ہو تو پھر تمام کی تمام نشانیاں سامنے رہتی ہیں لیکن انسان معرفت کے درجے میں بہت کم تر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ معرفت جو ہے صفات خدا کی جس کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں یہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں بلکہ ہماری اپنی ذات میں موجود ہیں, لیکن ان کو پک کرنے کے لیے, ان کو پرسیو کرنے کے لیے آپ کو اپنی فکر اور عقل کو استعمال میں لانا پڑے گا. یہ خود بخود آ کے آپ کی ذات میں نہیں گھس جائیں گی، یہ معرفت، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ یہ معرفت خود بخود نہیں پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر، اگر آپ اپنی فکر کو، اپنی عقل کو، اور جو آلات خدا نے دیے ہیں، جو تین قرآن کریم نے بتایا کہ جو تین ہم نے تم کو مین فیکلٹیز دی ہیں، سماع، بصر اور فؤاد، ٹھیک ہے، یعنی تمہاری قوت سماعت، تمہاری قوت بصارت و بصیرت، اور تمہارے فکر و عقل، تمہارا قلب، اگر اس کا استعمال انسان نہیں کرے گا تو خدا کی نشانیاں ہر جگہ بکھری ہوئی ہیں لیکن معرفت خدا نصیب نہیں ہو پائے گی، ٹھیک۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ خدا جو ہے ایک مقام پر کیا ہے، بالا تر ہے، بیونڈ ہے۔ وہ کون سا مقام بیونڈ ہے؟ ہر عقل سے اور ہر شہود سے، مقام ذات، اور جس کو کہا جاتا ہے مقام کنہ صفات یا مقام حقیقت صفات، یعنی صفات جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں، اس کا نہیں پتا، اس تک کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ اور جو انسان کے لیے میسر بلکہ واجب ہے وہ کیا ہے کہ عالم امکان میں، مخلوقات میں خدا کی صفات جس طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں، ان صفات کے ذریعے سے خدا کی شناخت اور اس کی معرفت، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے حاصل کرنا، اور وہ امپاسبل ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہاں پر آپ کو کوئی اشکال ہو رہا ہے تو پھر پوچھ لیجیے،
کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ذات باری لامحدود ہے، لامحدود مثلاً اگر ویسے دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم لامحدود، سمندر لامحدود، یعنی کہ اس وہ اتنا وسیع و عریض ہے کہ ہمارے اس میں نہیں سما سکتا، ہماری نظر میں نہیں سما سکتا، کہ جب ہم ذات خدا کے لیے لامحدود کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کس طرف اشارہ ہوتا ہے،
یعنی رغبے
کے حساب سے لامحدود؟
نہیں، دیکھیں آپ نے جس لامحدود کا ذکر کیا نا، وہ ریلیٹو انفینیٹیوڈ ہے، وہ ریلیٹو انفینیٹی ہے، یعنی مثال کے طور پر کہ آپ اگر ایک گلاس کے پانی کو سات سمندر کے پانیوں سے کمپیئر کریں گے تو آپ کہیں گے اس کے مقابلے میں وہ انفینٹ ہے، گویا کہ انفینٹ ہے، لیکن وہ حقیقتاً فائنائٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک وہ ہے۔ تو جب ہم یعنی ایون، اور اسی وجہ سے خاص طور سے آئمہ علیہ السلام نے اس بات کو منع کیا ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں ایون اپنی طرف سے لفظ بھی استعمال نہ کرو، کیونکہ تم جو الفاظ استعمال کرتے ہو وہ تمہارے ذہن کے اندر ایک مفہوم کے تابع ہوتے ہیں، اور جب تم ان الفاظ کو خدا پر اپلائی کرتے ہو تو گویا خدا کو تم اس مفہوم کے انڈر میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے، جو کہ سمپلی پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے، مقام تنزیہ۔ تنزیہ کا مطلب کیا ہے کہ میری فکر، میرا تصور، میری عقل، میرا شعور، میرا خیال اس بات سے عاجز ہے اور خدا اس سے منزہ اور بالا تر ہے کہ میں اس کو سمجھ سکوں یا میری فکر وہاں تک پہنچ سکے، یہ وہ مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ایون یہ آپ نے صحیح اچھا پوائنٹ آؤٹ کرایا ہے کہ یہ جو ورڈز ہم یوز کرتے ہیں نا، یہ بھی اس مقام کے لیے یوز لیس ہیں، کہ یعنی کہ جو انفینیٹی ہے، جس انفینیٹی کا تصور ہم رکھتے ہیں وہ ریلیٹو انفینیٹی کا تصور رکھتے ہیں، لیکن خدا کی جو انفینیٹی اور لامحدودیت ہے وہ ایبسولیوٹ انفینیٹی ہے۔ تو ایون ایبسولیوٹنس خود ہمیں پتہ نہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پر ہم سے پوچھا جائے کہ جناب گنتی کے کیا ہے، یعنی جو نمبرز ہیں محدود ہیں یا لامحدود ہیں، ہم کہیں گے لامحدود ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کس طریقے سے لامحدود ہیں، کہ آپ بڑے سے بڑا نمبر بھی سوچیں لیکن آپ اس میں ایک اور جوڑ دیں وہ ایک اور آگے بڑھ جائے گا، تو کیا خدا کے جو وہ ہے، مطلب آپ کا لامحدودیت ہے، وہ اس قسم کی ہے، ون مور ون مور ون مور، ٹھیک ہے، obviously not۔ ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جتنی بھی انفینٹیز کا تصور آتا ہے نا, وہ سب اس قسم کا تصور آتا ہے. اور ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتاؤں, 19th century میں جس نے پورا یہ انفینٹی والا نا پورا اس کو ایک میتھمیٹکس کی ایک برانچ بنایا, جس شخص نے, اس کا نام بہت ہی مطلب وہ ہے, یعنی ناشناس ہے وہ شخص, حالانکہ اس کے بہت مطلب میجر کنٹریبیوشنز ہیں میتھمیٹکس میں. گیور کینٹور, شاید آپ لوگوں نے بالکل بھی نام نہیں سنا ہوگا, گیور کینٹور 19th century میں, اس نے, اور اس کو تقریباً اس بات کا یقین تھا, وہ ایک بلیور تھا, کرسچن تھا جرمن, اور اس کو تقریباً اس بات کا یقین تھا کہ مجھے خدا نے منتخب کیا ہے اس چیز پر غور کرنے پہ, لیکن وہ اینڈ اپ ہوا ہے پاگل خانے میں. ایک انسین اسائلم, کیونکہ انفینیٹی پاگل کر دے گی آپ کو. وہی جو امام نے فرمایا ہے نا, ذات خدا پہ غور کرنے کی کوشش نہیں کرنا. حالانکہ ہی واز اے بریلینٹ میتھمیٹیشین, اور اس کی جو تھیوریز وغیرہ ہیں وہ آج بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں میتھمیٹکس میں, جس نے انفینیٹی پر واقعی سب سے زیادہ کام کیا, لیکن وہ ایک انسین اسائلم میں اینڈ اپ ہوا ہے, اس کا دماغ الٹ گیا. تو ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو. ہم جتنا اس پہ آگے جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, تو یہ جو لامحدودیت ہے وہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, ہمارے محدود ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جی,
آپ نے فرمایا کہ یہ ذات کی حقیقت اور صفات کی اوریجن جو ہے, یہ تو دونوں ایک ہی چیز ہیں.
نہیں, ایک چیز نہیں ہے,
صفات ذات سے الگ.
ہاں, ذات سے الگ نہیں ہے, لیکن بہرحال جب آپ, اب اگر آپ اس جملے کو سمجھ لیں تو آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کہ ذات جو ہے وہ بسیط ہے. بسیط کا مطلب کیا ہے, کہ مطلب اٹ ہیز نو بگننگ, نو اینڈ, نو کنفیگریشن, نو کمپوزیشن, جسٹ اے سمپل ریالٹی. ٹھیک ہے, جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن جب صفات کی بات آتی ہے نا, تو صفات ذات میں ایک ڈائمینشنلٹی یا تعین سے ریلیٹ کرتی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت گہرا کنسیپٹ ہے, یہ کہ ذات جو ہے وہ کیا ہے, ایک بسیط ہے. ٹھیک ہے, لیکن صفات کب پیدا ہوتی ہیں, صفات ذات میں سے, وہ ٹھیک ہے کہ صفات ذات کا حصہ ہے, یہ ذات سے جدا نہیں ہے, لیکن یہ صفات کب نمودار ہوتی ہیں, جب ذات میں ایک تعین آتا ہے, تبھی تو ایک صفت آئے گی. یعنی وہ چیز جو ایک سمپل ریالٹی ہے, اس میں صفت کہاں سے آئے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر آپ کے پاس پوری فضا ہے, اس میں وائٹ لائٹ بکھری ہوئی ہے, کچھ نہیں ہے, اور ایک سمپل ریالٹی ہے. لیکن اگر آپ اس کو فار ایگزامپل ایک پرزم سے گزارتے ہیں, اسی سفید روشنی کو, تو اس میں ایک جہت, ایک تعین آتا ہے, ایک ڈائمینشنلٹی آتی ہے, تب اس میں سے سات رنگ برآمد ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے. یہ بہت ان صفات کا نیچے آتا ہے, یہ نیچے آتا ہے, یہ بہت نیچے آتا ہے. ان صفات کا جو درجہ ہے وہ بہت نیچے ہے. بہرحال میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ گفتگو آسان نہیں ہے, انشاءاللہ.
وہ اسی وجہ سے کنفیوز ہو رہے کہ صفت جو ہے وہ موصوف کی غیر بھی ہو سکتی ہے, مگر جو اسماء ہے جسے,
لیکن پھر اس کے لیے اسم کی حقیقت کو آپ کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ اسم جو ہے نا, اس کو ہم جس معنی میں لیتے ہیں نام کے, نیم کے, پھر وہ اور زیادہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے.
یہ خود قرآن کے اندر اما یصفون کافی جگہ پہ آیا ہے کہ اللہ اس صفت سے بالاتر ہے جو اس کے لیے بیان کی جاتی ہے.
جی, انشاءاللہ. اور اسی لیے مطلب میری ایک گزارش ہے کہ اگر یہ موضوع آپ کو دلچسپی کا باعث بن رہا ہے نا آپ کے لیے, تو اس میں پھر پوری دقت کے ساتھ شامل رہیے گا. آن آف سنیں گے نا تو پھر بہت زیادہ دشواری ہو جائے گی. इन्हें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बहुत ही जिस हद तक मेरे लिए पॉसिबल है सिंप्लीफाई करते हुए और स्मूथ लेके चलूँ। लेकिन ये कि अगर इसमें बीच में ब्रेक ब्रेक आएगा ना आपकी समाअत में, तो फिर आपको खुद कन्फ्यूजन्स काफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि तौहीद इतना आसान है नहीं। ये बिल्कुल मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, दो शुबा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एक टर्म इस्तेमाल होती है तंजीह और तशबीह, ठीक है, इसको समझिए ज़रा अच्छे तरीके से। तंजीह का मतलब क्या है? तंजीह का मतलब यह है कि आप खुदा को बियॉन्ड करार देते हैं अपनी समझ और फिक्र और फहम के। तो मुनज़्ज़ा कौन है? मकाम हकीकत सिफात, कुन्ह सिफात और ज़ात खुदा, ये क्या है? ये तंजीह, मकाम तंजीह है, यानी ये बियॉन्ड है, ये आपके मेरे हर किसी के ताकत से बालातर है। तो उसे आप कहेंगे ये मकाम तंजीह है। और जब आप मखलूकात में आते हैं तो ये जितनी भी रुबूबियत है, जितनी सिफात का आपने नाम लिया, रहमानियत, रहीमियत, रुबूबियत, खालिकियत, राज़िकियत, ये आपको नजर कहाँ पे आती है? कहाँ नजर आती है? अपनी जात में भी और मखलूकात में भी, ठीक है। हवा में तो नहीं दिखते ना ये सब कुछ, इसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है ना। बात समझ में आ रही? इन्हें इन तमाम सिफात के मुशाहिदे के लिए एक वासिता जरूरी है या नहीं है, चाहे वो नफ्स इंसान हो या दीगर मखलूकात हो, दुरुस्त? तो यानी ये वो मकाम है कि जिसमें कोई भी मखलूक सिफत खुदा की शबीह बनकर सामने आती है। ये जुमला समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। यानी कि आपके अंदर जैसे वालिदैन है, वालिदैन के अंदर रहमानियत, रहीमियत, रुबूबियत, रज़ाकियत, ठीक है, यानी कि ये तमाम की तमाम सिफात उनमें से उभरती हैं या नहीं उभरती? तो जब वालिदैन अगर रज़ाकियत और रुबूबियत की सिफत का मुजाहिरा कर रहे हैं, गरम हो तो मैं बंद कर दूँ, रज़ाकियत रुबूबियत की सिफत का मुजाहिरा कर रहे हैं, तो वो सिफात खुदा के मुशाबे हैं या नहीं है? हाँ हाँ, मतलब किसी क्या मतलब, उसके मुशाबे, इसीलिए तशबीह की बात हो रही है, सिमिलैरिटी की बात हो रही है, ना कि वही है। ये कोई नहीं कह रहा कि वो वही है, उसके मुशाबे हैं या नहीं है। तो अगर आप किसी भी सिफत को किसी भी मखलूक में मुलाहिजा करते हैं तो वो सिफत सिफत खुदा की शबीह के तौर पर नजर आती है ना। शबीह का मतलब तो आप समझते हैं ना, यानी जो उससे मुशाबेहत रखे, जो उस जैसी हो, जिसमें उस पर सिमिलैरिटी पाई जाए। तो इसको क्या कहा जाता है, इस मकाम को क्या कहा जाता है? यानी मखलूकात में या मखलूकात के जरिए से सिफात खुदा का जाहिर होना, ये मकाम तशबीह है, ठीक है। तशबीह का मतलब समझ में आ रहा
है? तशबीह को भी तो एज ओरिजिनल होना चाहिए ना। आप कहते हैं कि मैंने रेप्लिका बनाया एक चीज, रेप्लिका को ओरिजिनल से बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए?
नहीं नहीं नहीं, यहां पर देखें फिर एक बहुत खास बात है, यहां एक बात समझिएगा बहुत गौर से, कि तशबीह का मतलब ये नहीं है कि मखलूक उस सिफत की मालिक है। तशबीह का मतलब ये है कि मखलूक सिर्फ और सिर्फ उस सिफत को रिफ्लेक्ट करती है।
जुमला फिर हमें कुछ सुनना पड़ेगा,
तजल्ली, उसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो तजल्ली है, तशबीह बसूरत तजल्ली, ठीक है। यानी मखलूक उस सिफत की मालिक नहीं है खुदा की तरह से, कि अगर वालिदैन रुबूबियत का मुजाहिरा करते हैं, अगर वालिदैन में से रहमानियत और रहीमियत झलकती हुई नजर आती है, तो वो इन सिफात के मालिक नहीं है, बल्कि ये वही सिफात खुदावंदी हैं जो उनकी जात के आईने से रिफ्लेक्ट होती हैं। تو یہ تشبیہ کیا ہے؟ بصورت تجلی ہے اور مینیفیسٹیشن ہے. تو خدا کی شناخت کہاں پر ممکن ہے؟ مقام تشبیہ میں ممکن ہے. اور خدا کی شناخت کہاں پر نہیں ممکن ہے؟ مقام تنزیہ میں. یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر خدا کے بارے میں ہمارا یہ اعتراف ہے اور وہ حقیقت ہے کہ خدا ہر فکر و عقل و وہم و تصور سے بالاتر ہے, تو یہ مقام تنزیہ ہے. وہاں پر ہمارے الفاظ, ہمارے مفاہیم, ہر چیز بیکار ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس میں بھی آگے بڑھتے بڑھتے ایک چیز آئے گی اور, لیکن ابھی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. تو اگر کوئی تنزیہ کا مطلب یہ لے کہ جناب خدا کی تو معرفت ہی ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ پیراڈاکس بنتا ہے, ایک مشکل مرحلہ. یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ذات خدا کی شناخت ممکن نہیں ہے, ذات خدا کا احاطہ ممکن نہیں ہے, مقام کنہ صفات تک پہنچنا پاسبلٹی نہیں رکھتا, تو بندہ یہ کہے کہ بھائی تو پھر ٹھیک ہے, تو خدا کی تو معرفت ہی نہیں ہو سکتی, چلو ہم فارغ چھٹی ہو گئی ہماری اس سے, صحیح. لیکن خدا کی معرفت کہاں ہوگی؟ مقام تشبیہ میں ہوگی, کہ جہاں پر صفات خدا مخلوقات کے آئینے میں سے متجلی ہوتی ہیں. اور اسی بنا پر پھر ہمارے لیے سب سے اہم ہستی کون قرار پاتی ہیں؟ حجت خدا. یعنی حجت خدا کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ شخصیت یا وہ ہستی جس کو خدا نے خود منتخب کیا اور اسے اپنی جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا صفات کا جلوہ بنایا. یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مختلف انبیاء کے مختلف درجات ہیں, ٹھیک. تو ہمارے لیے پھر سب سے قیمتی شخصیت کون ہوئی؟ وہ ہوئے. کیوں ہوئے سب سے قیمتی شخصیت؟ اس لیے نہیں کہ مجھے نوکری دلا دیں گے, اس لیے نہیں کہ میرا گھر بنوا دیں گے. کیوں میرے لیے سب سے قیمتی شخصیت ہیں؟ کہ وہی ہیں اس پورے نظام خلقت میں کہ جن سے مجھے میکسیمم لیول پر صفات خدا جن میں مجھے دیکھنے کو مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو مقام تشبیہ ہے, یعنی کہ مخلوقات کے ذریعے سے صفات خدا کی تجلی, تو وہ کون سی مخلوق ہے جو جس میں سب سے زیادہ اور سب سے بزرگ تر اور سب سے ہائیسٹ لیول پر صفات خدا نظر آئیں گی؟ وہ ذات معصوم ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس ہستی کو خدا نے خود اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اپنی صفات ان کو عطا کی ہیں. اور جیسا کہ ابھی نشان جو بات کر رہے تھے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون, کہ خدا لوگوں کی بیان کردہ توصیف یعنی صفات سے بالاتر ہے, لوگ کبھی نہیں صفات بیان کر سکتے. لیکن اسی آیتوں میں ایک جملہ یہ بھی ہے, الا عباد اللہ المخلصین, مگر اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے خود اپنے لیے خالص کر لیا ہے. صرف اور صرف وہ بندے خدا کی صفات اگر بیان کریں گے تو وہ حق ہوں گی اور درست ہوں گی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ خود ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, اس مقام کو ہم انشاءاللہ آگے اور بیان کریں گے کہ اب وہ خود نہیں ہے. جو اس دعا کے اندر بھی جملے ہیں امام زمان علیہ السلام کی, دعائے رجبیہ میں بھی اس قسم کے جملے ہیں نا, لا فرق بینک و بینہ, کہ وہ جو ہیں وہ تیرے کس کون سے بندے ہیں کہ ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے, تفریق نہیں ہے. الا انہم خلقک و عبادک, مگر یہ کہ وہ تیری مخلوق ہیں اور تیرے بندے ہیں. فتقها و رتقها بیدک, ان کا شگافتہ ہونا, ان کا جڑ جانا تیرے ہاتھوں میں. بدعها منک و عودها الیک, उनकी इब्तिदा तुझसे है और उनका पलटना तेरी तरफ है। ये वो बंदे हैं इबादल्लाहिल मुखलसीन, ठीक है। सिर्फ ये वो हैं कि जो तारीफ और तौसीफ है। तो अब आप समझ में आ रहे हैं कि मासूम क्यों कीमती हैं। मासूम इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम हैं कि उनकी जात में जो रिफ्लेक्शन है और उनकी जात से जो सिफात खुदा मुतजल्ली होती हैं, जहूर करती हैं, ना उस मेयार पर सिफत खुदा कहीं और नजर आएगी और ना उस फैलाव के साथ, वसत के साथ सिफत खुदा की मारिफत कहीं और से हासिल हो सकेगी। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि मकाम तंजीह क्या है, यानी जो आउट ऑफ बाउंड है, उधर घुसने की कोशिश नहीं करना। और उसी के बारे में कुरान फरमाते हैं कि कुरान करीम ने एक जुमला बहुत अच्छा खूबसूरत लिखा है, यह अदबी एतबार से कि मारिफत मतन ज़ात खुदाए सुबहान, यानी ज़ात खुदाए सुबहान के बारे में मारिफत, न मकदूरस्त न मुतवक्के न मूरिद तकलीफ व तरगीब, यानी ना मकदूर है, इन्हें पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, ना मुतवक्के है, ना खुदा ने इस चीज को किसी से एक्सपेक्ट किया है कि तुम इस मकाम तक आओगे, ना मुरीदे तकलीफ, ना ऐसी कोई तकलीफ किसी पर डाली है, ना तरगीब, बल्कि तरगीब भी नहीं दिलाई है, सही, बल्कि हमवारे महवर तहजीर तरहीब व तख़फीफ बूदे अस्त, बल्कि इस मकाम तक पहुंचने से डराया गया है, खौफ दिलाया गया है। सूरह आल इमरान की आयत का हवाला देते हैं, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह तुमको खबरदार करता है अपने नफ्स के बारे में, यानी नफ्स खुदा, ज़ात खुदा के बारे में वहां घुसने की कोशिश ना करना, उस पर हाथ डालने की कोशिश ना करना, उस मकाम पर खुदा इस बारे में तुमको बरहज़र यानी खौफ दिलाता है, तुमको वार्न करता है कि ये काम नहीं करना नफ्स खुदा के बारे में, कि हर चंद औहदी अज सालिकान वासिल कुए मारिफत अज तहय्युर दरा वादी खबरदादैन, के जितने भी जो सालिकान हैं राह इल्लाह और इस राह मारिफत पर चलने वाले, जिसने भी इस किस्म की वादी से करीब हुए या इस वादी की तरफ मुतवज्जे हुए, तो वो सिर्फ और सिर्फ हैरत और बेखबरी की ही खबर देते हैं, इससे ज्यादा और खबर और कोई भी नहीं दे पाता, ठीक है। और इसी के हवाले से कुछ हुजूर की दुआ के भी जुमले कि रब्बी जिदनी फी का तहय्युरन, यानी जब ज़ात खुदा के हवाले से बात की गई की है तो फरमाया है कि ऐ मेरे रब, अपनी ज़ात में मेरे तहय्युर में इजाफा फरमा, ठीक है। ये नहीं कहा कि अपनी ज़ात के बारे में मेरी मारिफत में इजाफा कर, अजीब जुमला है, रब्बी जिदनी फीका तहय्युरन, यानी मैं जितना तेरी ज़ात से करीब हूँगा तो मारिफत नहीं बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा, तहय्युर बढ़ेगा, ताज्जुब बढ़ेगा, ठीक। तो अब इसमें आगे चलते हुए कि इज अज इक्तना है ज़ात व सिफाते ज़ाती, तो लाजिम है कि ये बात पेश नज़र रहे कि मारिफत खुदा बा एतराफ बा इज व इग्तराफ कसूर हमरा अस्त, कि ये लाजिम है कि आप मारिफत खुदा वाजिब है ना हम सब पर, ठीक है। यानी जैसे मैंने कहा कि ये तो नहीं है कि अगर हमसे कहा जाए कि मारिफत ज़ात नामुमकिन है तो हम मारिफत खुदा से ही फारिग हो गए, ये नहीं है, बल्कि मारिफत खुदा जितना हमारे लिए मयसर है, पॉसिबल है, मुमकिन है, वाजिब है, बल्कि आप जितना आगे जा सकते हैं उसमें जाएं, वो भी इन्फिनिट है, ठीक है। यानी सिफात खुदा के मराहिल में मारिफत हासिल करना, उसकी भी कोई इंतहा नहीं है, जितना आगे जा सकते हैं आप जाएं। لیکن وہ ہمیشہ کیسے ہوگی؟ وہ اعتراف عاجزی اور قصور کے ہمراہ ہوگی، اس کے ساتھ ہوگی، کیونکہ احاطہ بر موجود غیر محدود، نہ محصور موجود محدود است، نہ برائے او تکلیف، کیونکہ لا محدود نہ اس کے لیے پاسبل ہے، نہ اس کی ایسی کوئی تکلیف وہ ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ معرفت خدا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ذات اقدس خدا اور اس کی صفات ذاتی کے بارے میں انسان اپنی عاجزی کا اعتراف نہ کر لے، اس وقت تک معرفت خدا مکمل نہیں ہوتی۔ اور اسی چیز کو یعنی قرآن کریم کی آیت میں بھی بیان فرمایا، لیس کمثلہ شے۔ اب یہ تین فقریں، تین ورڈز ہیں خالی، لیکن اس کے اندر پورا ایک سمندر بند ہے۔ مثل، اچھا عربی زبان میں یہ جو ورڈ ہے مثل، یعنی میم، فے اور لام، یہ آپ کو دو معنی دیتے ہیں، مثل یا مثل، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ مثل کا مطلب وہی ہوتا ہے شبیہ، اور مثل کا مطلب ہوتا ہے لائک اٹ، یعنی اس کا ریپلیکا، صحیح؟ کہ جیسے اب اگر آپ ایک ماڈل بناتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روضے کا، کہ جس میں آپ تمام کے تمام فیچرز کو کیپچر کرتے ہیں اور جو بالکل اصل کا اسکیلڈ ڈاؤن ماڈل ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مثل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے ہمارے یہاں بہت سارے جو ہوتے ہیں ماڈلز بنے ہوئے، وہ ایسے تو نہیں ہوتے، اس میں انہوں نے بس ایک گنبد بنا دیا، کچھ مینار بنا دی، وہ مثل ہے۔ یعنی مثل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو دیکھ کر آپ اصل کو سمجھ تو سکتے ہیں کچھ، لیکن اس کی حقیقت نہیں جان سکتے۔ تو مثل و نور ہی ہے، خدا کے نور کی مثل ہے، لیس کمثلہ شے، مثل کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی چیز آپ کائنات میں وہ نہیں لا سکتے جو مثل خدا ہو، یعنی جس کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ کو خدا کی حقیقت پتہ چل جائے گی کیا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس کائنات میں وہ موجود ہے، اس کے نور کی مثل موجود ہے، کہ جس کے ذریعے سے آپ اس کے نور کو جان سکتے ہیں، اس کو پہچان سکتے ہیں، اس کی شناخت کر سکتے ہیں، معرفت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ورڈ ہے نا، لیس کمثلہ شے، یہ خود اس بات کو بتا رہے ہیں کہ جب خدا کے مثل کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کی ذات کی حقیقت پتہ کہاں سے چلے گی؟ یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی ایک کلر ایسا ہو جس کے مثل، جس سے سملر دنیا میں کوئی کلر نہ پایا جائے، آپ کبھی بھی اس کو جان سکتے ہیں؟ یعنی آپ غور کریں کہ جتنی بھی چیزوں کو آپ پہچانتے ہیں، وہ چیزیں اگر خالی ایک یونیک آبجیکٹ ہوں کہیں پر، تو لوگ نہیں پہچان سکتے اس کو۔ یعنی کہ سفید رنگ آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ ایک سفید کے برابر اس کے مثل ایک اور چیز سفید ہوتی ہے، یا اس کے کنٹراسٹ میں کوئی ایک کلر بلیک ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں آپ جان سکتے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے، کہ اگر کسی شے میں حرکت نہ پائی جائے، اور اگر کوئی ہستی جو ہے وہ، لطافت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، لطیف، لائٹ، لائٹ ہونا، ہلکا، یعنی جس کو ہلکا کا مطلب بے وزن، جس میں دباؤ نہ ہو، ثقل نہ ہو، اگر کوئی شے بے انتہا لائٹ ہو اور اس میں حرکت نہ ہو، انسان کبھی بھی اس کو سینس کر سکتا ہے؟ सोच के बताएं,
नहीं कर सकते,
ना यानी कि अगर ना उसमें हरकत है, ना उसमें वेरिएशंस हैं, ना उसमें सकल है, तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है लई से कम इसल ही शायद कि उसके मिसल कोई चीज नहीं है, किसी चीज को उसके लाइक हिम जब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ भी नहीं है, तो वहां पर मारिफत जो है ना वो वहां उस जगह पर मारिफत को ले जाना ही बेकार है, कोशिश करना ही बेकार है, उसका नतीजा सिवाय गुमराही के या कोई गलत सलत बात मान लेने के और कोई दूसरा नतीजा नहीं निकलेगा। तो फिर अज लिहाज जहत व मकान मुनज़्ज़ा अस्त, बल्कि खुद ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की लॉजिक है कि जब भी आपसे पूछा गया कि खुदा कहां पर है या खुदा कब से है, तो उसके जवाब में आपने हमेशा ये बयान फरमाया कि ये सवाल एब्सर्ड है। क्यों एब्सर्ड है? इसलिए कि खुदा खुद खालिक मकान व जमान है, यानी मकान स्पेस एंड टाइम, कि जो स्पेस एंड टाइम को क्रिएट करने वाला हो, स्पेस एंड टाइम उसकी मखलूक हो, तो वो खुद उस पर कैसे अप्लाई हो सकती हैं, वो खुद उसके अंदर कैसे आ सकता है, क्योंकि कोई चीज स्पेस के अंदर बाउंडेड होगी तो उसके बारे में आप कह सकते हैं ना कि ये इसमें कहां पाया जाता है, या अगर कोई चीज टाइम की जो हुदूद है, वक्त की जो हुदूद है, उसके अंदर मौजूद होगी तो आप कहेंगे ना कि ये कब से है। लेकिन जिसने इन दोनों को खुद खल्क किया है, खुद उनका खालिक है, वो कैसे इसके अंदर समा जाएगा कि उसके बारे में मैं तुमको बताऊं कि वो कहाँ है और किधर नहीं है और कब से है और कब से नहीं है। या तो यानी इसी वजह से आप देखेंगे नहजुल बलागा के ना बहुत सारे खुतबात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, सादा सादा सी बातों के बावजूद, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम की मंतिक को समझना भी आसान काम नहीं है, बहुत गहरे मतालिब हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो खास तौर से जो तौहीद बयान फरमाई है उसमें बहुत गहरे मतालिब हैं
जी।
हर जगह वक्त है लेकिन उस वक्त की नौइयत अलग है, ये इसको इस वक्त को जमान कहते हैं, वो है यानी कि जैसे हमारे हुकमा अगर दुरुस्त हैं, और ये टर्म्स खुद कुरान की हैं, और मैंने इसको बहुत पहले आप लोगों को याद होगा एक्सप्लेन भी किया था पाकिस्तान में इंसान शनासी वाले दुरुस में, कि जहां पर यानी वक्त जो है ना वो तीन रेफरेंसेस से एग्जिस्ट करता है। एक रेफरेंस वो होता है कि जिसमें जो रेफरेंस है वो भी वेरिएबल है, और जिस पर वक्त गुजर रहा है वो भी वेरिएबल है, ठीक है। तो इस वक्त को कहते हैं जमान या जमाना, जिसमें मैं और आप मौजूद हैं, यानी हमारा रेफरेंस वो सूरज और वो सब वो भी वेरिएबल्स हैं, और हम लोग भी, हम में भी तब्दीली और तगैर आ रहा है। इसके ऊपर जो वक्त आता है जो मलकूत का वक्त है, आलम मलकूत का, वो वक्त दहर है, वो जमान नहीं है। उसमें जो उस वक्त में पाया जाता है उसमें तो तब्दीली है, अगरचे के जमान के मुकाबले में बहुत स्लो है, लेकिन रेफरेंस जो है वो है, अब उसमें तब्दीली नहीं हो रही है, रेफरेंस में तब्दीली नहीं है। तो इस वजह से आलम मलकूत खत्म होने वाला नहीं है जैसे ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका रेफरेंस भी चेंजिंग है, तब्दील हो रहा है। और उससे भी ऊपर जो वक्त है, कि जो वक्त आप कह लीजिए कि जो इलाही या उन मखलूकात का वक्त है कि जिनमें मैटर नाम की कोई चीज सिरे से एग्जिस्ट नहीं करती, वो सरमद है। और ये लफ्ज सरमद जो है ये कुरान में एक मरतबा आया, खाली दहर कुछ मरतबा आया।
तो
वक्त है लेकिन वो वक्त हमारे उससे, जैसे कुरान ने एक मिसाल दी है सूरह मआरिज में, कि जो अम्र है या वो चीजें हैं खुदा की तरफ वो बुलंद होती हैं, फी यौमिन काना मकदारुहु खमसीना अल्फ सनतिन, तो वक्त है, लेकिन वो उसका एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर है। ठीक, तो खुदा खालिक जमान व मकान है, जमान व मकान उस पर अप्लाई नहीं होते। उसके बाद जो दूसरी एक बात है, अब ये भी एक टेक्निकल वर्ड है कि वो माहियत से मुनज़्ज़ा है, इस वजह से ज़ात खुदा काबिल शनाख्त नहीं है। माहियत का मतलब क्या है? माहियत का मतलब ये है कि यानी फॉर्म, शेप या कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी बुनियाद पर आप चीज़ों को पहचान पाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हर जगह पर ये एक जैसी चीज़ नहीं होती। यानी जैसे मिसाल के तौर पर हवा है, हवा को आप स्मेल नहीं कर सकते, हवा को आप टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें, कुछ चीज़ें दरियाफ्त हो गई कि जिनके ज़रिए से आप हवा को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माहियत का मतलब है कि वो चीज़ें जो आपको किसी भी चीज़ की फॉर्म, शेप या रियलिटी के बारे में बता रही होती हैं, और वो उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस से मुताल्लिक होती हैं। खुदा के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता चलाएंगे? ठीक है, और यानी ये बात हम क्यों कह रहे हैं ज़्यादा, इसलिए कह रहे हैं कि जब खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारी जान से ज़्यादा तुमसे नज़दीक हूँ, मैं हर शय की मईयत में मौजूद हूँ, मैं किसी शय से जुदा नहीं हूँ, मैं किसी शय से दूर नहीं हूँ, तो जो हमसे इतना करीब है उसको हम क्यों कह रहे हैं कि उसकी ज़ात को पहचानना मुमकिन नहीं है? ठीक है, यानी यहाँ पर मैं जिस शुबे की तलाफी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ज़ात खुदा की मारिफत मुमकिन नहीं है, तो मे भी उसमें दिमाग में ये ख्याल आ रहा हो कि भाई ठीक है, वो हमसे बहुत बियॉन्ड है, अर्श पर है, अर्श पता नहीं कहाँ पर है, और जो हस्ती हमसे इतनी दूर है बिल्कुल, तो क्या क्या पता क्या है, सही है, नई ज़ात नहीं पहचान सकते, इस किस्म का शुबा दिमाग में ना आए। बल्कि हम जिस हस्ती की ज़ात के बारे में मुतलकन जाहिल होने और रहने की बात कर रहे हैं, वो हस्ती किसी नामालूम मकाम के बियॉन्ड बैठी हुई पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि वो हस्ती है कि जो मेरी रगे गर्दन से भी ज़्यादा मुझसे नज़दीक है। ये मैं उस हस्ती की बात कर रहा हूँ, उस हस्ती की बात नहीं कर रहा जो कहीं गुम है, कहीं दूर है, कहीं बाईद है। इसलिए ये बात करना ज़रूरी थी, ये जो जुमले बयान किए ना कि खुदा माहियत नहीं रखता, खुदा किसी शय की मिसल नहीं है, खुदा अगर हम कह सकते हैं तो द प्योरेस्ट रियलिटी है, प्योरेस्ट रियलिटी, और इस वजह से उसमें कोई वो वाली हालत और कैफियत नहीं पाई जाती कि जिसको आप अपने सेंसेस के जरिए से पकड़ लें। यानी आप लोगों ने वो वर्ड अभी सुने होंगे ना, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में पढ़ा या सुना है आपने किसी ने? सही है, तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में सबसे मजेदार बात क्या है कि जो यूनिवर्स आप देखते हैं अपने टेलीस्कोप से, वो उस यूनिवर्स के मुकाबले में कि जिसे आप अपनी इक्वेशंस के जरिए से पहचान पा रहे हैं कि है, या जो अपने आसार से नजर आ रही है, वो उसका खाली 4% है। जो विजिबल यूनिवर्स है वो परसीवेबल यूनिवर्स का खाली 4% है, और बाकी तकरीबन 23 या 24% डार्क मैटर है जो किसी भी डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं होता, और 70 या 71% जो है वो डार्क एनर्जी है, जिसको खाली आप एक कैलकुलेशन तो समझ सकते हैं कि इसे होना चाहिए क्योंकि हमें ये आसार ऐसे दिख रहे हैं। तो ये है क्या? कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी खुद साइंस इस बात का एतराफ कर रही है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें आपके सेंसर डिटेक्टर बिल्कुल उसको खबर ही नहीं है कि वो क्या है।
जब डिटेक्टर
नहीं, देने मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे मिसाल के तौर पर कि 1930s में ये बात पता चली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। अब यूनिवर्स के अंदर जितना मटेरियल मौजूद है तो वो मटेरियल के मुताबिक तो उसे ग्रेविटी की वजह से उसको अंदर आना चाहिए, नहीं एक्सपैंड किस वजह से हो रही है। अब आपको दिख तो रहा है उसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही है, और जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं उस स्पीड के मुताबिक कि जिस स्पीड के साथ यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, तो आपको ये समझ में आता है कि इतनी एनर्जी हो जो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रही हो तो ये यूनिवर्स इस तरीके से एक्सपैंड कर सकती है। अरे बात समझ में, तो आपको एक असर दिख रहा है, कुछ पता नहीं कि क्या है, कहां से आ रहा है। तो ये तमाम के तमाम मामला जो है ना, ये अब खुद मतलब इंसान के अकली उलूम भी इस जगह तक आ रहे हैं कि हर चीज को आपके सेंसर नहीं सेंस कर सकते, हर चीज आपके डिटेक्टर्स में नहीं आती, हर चीज आपको आंखों से नहीं दिखती। तो जितनी ज्यादा प्योर होगी रियलिटी उतना ही ज्यादा हमारे मटेरियल सेंसर से दूर होगी, उसके बियॉन्ड होगी। ठीक, तो ये वाली बात आज की हद तक समझ में आई कि मारिफत खुदा वाजिब है। कैसे वाजिब है? उन रस्तों से वाजिब है, सिफात और अस्माए इलाहिया के जरिए से वाजिब है। जो और सिफात और अस्मा क्या है, ये मखलूकात के जरिए से तजल्ली करती हैं, और उनमें सबसे बेहतरीन वसीला उन अस्माओं सिफात को हासिल करने के लिए और समझने के लिए हुज्जत खुदा और मासूम है। ठीक, ये हमारे लिए लाजिम है इस रस्ते पे आगे बढ़ना, लेकिन जो चीज पॉसिबल नहीं है वो ज़ात खुदा और हकीकत सिफात खुदा का जानना, पहचानना या वहां तक पहुंचना, ये पॉसिबल नहीं है और किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। उसके रीजंस पे भी हमने बात कर ली। अच्छा, अब इसी किताब में आगे चलते हुए जिस टॉपिक को हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा लेंगे, आज मैं इसको ख़त्म करूं इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबे के हवाले से कि जिसमें आपने यही बात बयान फरमाई है। तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह जब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें आयतुल्लाह जवादी अमली ने 7 इश्कालात बयान करके उनका जवाब बताया। इश्कालात किस पर? कि ये जो नज़रिया है कि ज़ात खुदा की मारिफत मुमकिन नहीं है, ठीक है, ये तमाम के तमाम मसाइल जो इल्मी हैं ये इतने सिंपल नहीं है कि हर एक मान जाता है इसको या हर एक मान के बैठ गया है। इस पर इख्तलाफ हैं, इस पर इश्कालात हैं, मुख्तलिफ उलमा, कुछ उलमा एक राय रखते हैं, कुछ दूसरी राय रखते हैं। तो उसमें उन्होंने उन इश्कालात को बयान किया, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए और आपने उस मकाम को भी क्रॉस कर लिया कि जिसके बारे में जबराइल ने फरमाया कि मेरे पर जल जाएंगे अगर इससे आगे बढ़ा, तो आपने ज़ात खुदा तक रसाई की या ज़ात खुदा के रूबरू आ गए आप। ठीक है, अब ये एक बात है, ये एक नज़रिया है कि कहते हैं नहीं ये बात दुरुस्त नहीं है कि किसी की भी पहुंच जो है वो ज़ात खुदा तक मुमकिन नहीं है, सफ़र मेराज में, सैर मेराज में ये चीज़ मुमकिन हुई है एंड सो ऑन। या कुछ लोग ये कहते हैं कि जब फना फिल्लाह की मंजिल आ जाती है तो फिर इंसान ज़ात खुदा के रूबरू हो जाता है, ज़ात खुदा तक पहुंच जाता है, ये नज़रियात भी मौजूद हैं। तो उसका फिर उन इश्कालात को बयान करके और फिर उनका जवाब दिया है कि नहीं ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, लेकिन इन तमाम जगहों पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताता चलूं कि देखें जब भी हम इल्म की बात करते हैं ना, तो इल्म के जो एरियाज होते हैं वो कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होते, ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। हम लोगों को दीन सिखाया जाता है लाइक ब्लैक एंड वाइट, कि जो मेरा अकीदा है वो वाइट है और जो मेरे अकीदे से हट कर है वो सबका सब ब्लैक है। बस इतनी इतनी सी बात मान लो, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप दीन को या हकीकत को इल्म के रास्ते से जब एक्सप्लोर करना शुरू होते हैं तो आपको साफ समझ में आ जाता है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। और जब तक हमारी मुलाकात हुज्जत खुदा से नहीं हो जाती, जब तक हमें इमाम अलैहिस्सलाम की शागिर्दी का शरफ नसीब नहीं हो जाता, हमारी मारिफत में बहुत सारे ग्रे एरियाज बाकी रहेंगे। इस बात को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। और अगर कोई भी आके इस किस्म के दावे करे ना कि नहीं जी, जो मैं मानता हूं और जानता हूं वह सब बिल्कुल एब्सोल्यूटली ट्रू होता है और सब बिल्कुल, ये बिल्कुल फजूल बात है। सही है। और इसी वजह से वो मतलब वो फितने फसाद का डर है। वरना खुद हम ही बहुत सारे लोगों से अगर बात करें ना तो बहुत सारी बातों का जवाब नहीं है। और जब मैंने पर्सनली बात की है तो मुझे अच्छी तरह पता है कि किसके पास कितना जवाब है। सही। तो इस चीज को जहन में रखिएगा, इससे ना परेशान हो जाइएगा। ये इल्म के सफर में होता है, ये इल्मी सफर का एक हादसा है। इसी वजह से खास तौर से जो मारिफत खुदा, मारिफत इंसान और मारिफत हकीकत नफ्स का जो सफर है ना, ये हजारों साल से जारी है। ये कोई आज और कल की बात नहीं है, ये हजारों साल से दुनिया के बेहतरीन दिमाग जो है ना वो इन हकायक पे गौर कर रहे हैं और अभी तक एक हतमी नतीजा नहीं दे पाए। आखिरी नतीजा कोई नहीं दे पाया है कि ये क्या है। ठीक है, इट इज एन ऑन गोइंग जर्नी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जब इमाम का जहूर होगा तो इमाम अलैहिस्सलाम के जहां पर बहुत सारे जाहिरी फयूजात नसीब होंगे तो इंशाल्लाह ये इल्मी फयूजात भी हमें मिलेंगे कि ये तमाम हमारे सवालात और इश्कालात दूर हो जाएंगे। ये छोटा सा खुतबा है इमाम अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में, खुतबा नंबर 49। الحمد لله الذي بطن خفيات الامور، کہ حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو امور کے مخفی، یعنی مخفی امور کا بھی باطن ہے۔ پھر میں نے کہا محمد علیہ السلام کے جو جملے نا وہ ایک جملہ پوری ایک ریسرچ ہے۔ خفیات امور، یعنی خفی کا مطلب جو ویسے ہی بالکل چھپا ہوا ہو، बिल्कुल नजरों से ओझल है, उसका भी क्या है, बातें है, उसका बातें है। वदल्लत अलैहि आलामुज़्ज़ुहूर, और जितनी भी चीजें हैं, यानी जितनी भी चीजें जाहिर होती हैं उनके आलाम और उनकी निशानियां हैं, वो सब की सब खुदा पर दलालत करती हैं या खुदा पर के वजूद को साबित करती हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दो मकामात, एक तंजी एक तशबी, तो वो मकाम जो खफी और बातें है वो तंजी है, वहां पर हाथ नहीं जा सकता आपका। लेकिन ये जो निशानियां हैं, आलाम हैं, आयात खुदा हैं कि जो हर जगह जाहिर और हुवैदा हैं, ये मकाम है तशबी है। तो खुदा दोनों मकामात पर है। वम तना अलाइनिल बसीर, और देखने वाली आंख के लिए इम्तना है, यानी मना है कि देखने वाली आंख उस तक पहुंच सके। फला ऐन मन लम यराहू तुन केराहू, कोई आंख ऐसी नहीं है कि जो उसको नहीं देखती और उसका इनकार कर दे। जुमला समझ में आ रहा है? या इसको थोड़ा सा रिफ्रेस कर दूं कि आंख ना देखने के बावजूद उसका इनकार नहीं कर सकती। तो आंख उसको कैसे देखती है? उसकी सिफात और अस्मा की तजल्ली के तौर पर देखती है, उसकी सिफात के जरिए से उसको देखती है। आंख उसकी जात को, उसकी हकीकत को नहीं देखती, लेकिन ना देखने के बावजूद उसका इनकार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी निशानियां जाहिर और हुवैदा हैं। वला कल्ब मन अस्बतहू युबसिरहू, और न वो कल्ब जो उसका इकरार करता है या उसको साबित मानता है उसको देख सकता है, यानी जो आंख उसका इनकार करती है, जो आंख उसको नहीं देखती वो उसका इनकार नहीं कर सकती, और वो दिल जो उसके वजूद को साबित मानता है वो उसको देखने की सलाहियत नहीं रखता। सबका फिल उलू फला शय आला मिन हो, उलू में यानी बुलंदी में वो सबसे ऊपर है, कोई शय उससे ऊपर नहीं है। वक़रोबा फिद दुनूए फला शय अक़रबो मिन हो, यानी बुलंदी में इतना बुलंद है कि उससे बुलंद और कोई नहीं है, और क़ुर्बत में इतना करीब है कि उससे ज़्यादा करीब कोई नहीं है। है ना, ये पैराडॉक्स, ये तज़ाद, और ये और इसी को जो उरफ़ा है ना बयान करते हैं कि जिसने मारिफत खुदा में इन दो चीज़ों को बैलेंस करने में कामयाब हो गया ना, कि ना इधर झुके ना उधर झुके, उसने मारिफत के कमाल को हासिल कर लिया। फलस्तिअलाउहु बादहु अन शैइन मिन खल्क़िही, उसकी बुलंदी ने उसको मखलूकात से दूर नहीं किया, और उसकी क़ुर्बत ने उसे दूसरों की सतह पर लाकर नहीं खड़ा कर दिया कि तुम कि अगर वो इतना करीब है तो तुम उनको उन जैसा समझना शुरू कर दो, कि ना उस बुलंदी ने उसे मखलूकात से दूर कर दिया और ना उस क़ुर्बत ने उसे मखलूकात जैसा बना दिया या उनकी सतह पर लाकर खड़ा कर दिया। लम युतलिअल उकूल अला तहदीद सिफतिही, उसने अक्लों को अपनी सिफात के बारे में कोई इत्तला नहीं दी है, कि उकूल उन उस इंफॉर्मेशन के जरिए से उस तक पहुंच जाए, उकूल को उसने अपनी सिफात पर मुत्तला नहीं किया है। वलम यहजुबहा अन वाजिब मारिफतिही, और ना अक्लों को अपनी वाजिब मारिफत हासिल करने से रोका है, ना अक्लों को अपनी सिफात और उनकी हकीकत पर मुत्तले किया है, और ना वो वाजिब मारिफत को हासिल करने से रोका है। फहुवल्लज़ी तशहदु लहू अलामुल वुजूद अला इक़रार क़ल्बे ज़िल जुहूद, के वो ज़ात वो है कि वजूद के अंदर जो निशानियां हैं, मखलूकात के अंदर जो निशानियां हैं, वो दिलों पर ऐसे असर करती हैं कि जो इनकार करने वाला है वो भी इकरार किए बगैर नहीं रह सकता। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि ये आजकल आप देखें ना जितने भी एथीस्ट और दहरी हैं कि ये इन्हें खुदा को नहीं मानना, लेकिन ये जितने भी वर्ड्स यूज करते हैं ना, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट और ये सब, ये सारे के सारे बस वही है कि वो अल्फाज रिप्लेस करने वाली बात है, लफ्ज को लफ्ज से बदलने, बस वो उस मानना नहीं है जो बात दीन जिस तरीके से समझा रहा है ना, वो नहीं मानना। तो ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इमाम अलैहि सलाम ने कि उसकी निशानियां इस तरीके से हुवैदा और वाज़े हैं आलाम वजूद के, जो इनकार करने वाले का कल्ब है वो भी इनकार नहीं कर सकता, वो भी उसको मना नहीं कर सकता। तआला अल्लाहु अम्मा यकूलुल मुशब्बहून, मुशब्बहूना बिही, जो उसकी तशबीह, उसको किसी से मुशाबह समझने वाले उसके बारे में जो भी कहते हैं, खुदा उससे बाला तर है। वल जाहिदून, और जो उसका इनकार करने वाले उसके बारे में कहते हैं, लहू उलुवन कबीरा। ठीक है, ये मुख्तसर सा खुतबा, इसका नंबर 49। लेकिन ये खुतबे का जो मतन है ये बिल्कुल उसी सारी थीम को कैप्चर करता है जिस पर हमने आज बात की थी, तशबीह और तंजी, एक मारिफत वाजिब और एक मारिफत गैर मुमकिन। ठीक, तो ये जो है बहुत बहुत यानी अहम नुक्ता है मारिफत ज़ात बारी ताला और मारिफत आम के लिए। ठीक, तो आज यहाँ तक बात ख़त्म होती है, कोई अगर सवाल हो तो बिस्मिल्लाह।
تو یہ تشبیہ ہے صفات
نہیں.
کے قربت ہے
نہیں نہیں,
نہیں.
حقیقت ہے. یعنی جہاں پر قرآن نے مثال یا مثل دی ہے نا, وہاں اس کو بیان کیا ہے. جیسے جب بات کی گئی اللہ نور السماوات والارض, تو پھر اس کے بعد لفظ مثل آیا, مثل و نور ہی, کہ اب جو مشکات اور مصباح اور زجاجہ اور کوکب دری اور وہ سب الفاظ جو آ رہے ہیں یہ بطور مثل آ رہے ہیں. لیکن جب قرآن کریم میں یہ جملے آئے ہیں کہ خدا جو ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید والا جملہ ہے, یا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, کہ خدا انسان اور اس کے قلب کے درمیان موجود ہے, یہ حقیقت ہے, یہ کوئی مثل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے کہ جب لقاء اللہ کا مرحلہ آئے گا قیامت میں, تو خدا کسی کے لیے بھی ہستی ناشناس نہیں ہوگا. یعنی ایسے ہی حجت خدا کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا, کہ جب انشاءاللہ امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو امام لوگوں کے لیے ناشناس نہیں ہوں گے. ہر ایک ان کو دیکھ کے یہی کہے گا کہ میں ان کو پہلے پہچان چکا ہوں, جانتا ہوں میں ان کو, میں ان سے ملاقات کر چکا ہوں. اور بلکہ جیسے مثنوی مولانا روم میں جو اسی چیز کی مثال دی ہے, انہوں نے وہ یہ مثال دی ہے کہ ایک, کیونکہ اس میں تو حکایتوں کے ذریعے سے بتایا گیا نا, چھوٹے چھوٹے واقعات حکایت, کہ ایک مچھلی تھی کہ جو جس نے دوسری کسی مچھلی یا اس سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ پانی جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے, بہت مفید ہے, اور پانی کے اتنے مطلب وہ ہیں, اور پانی حیات بخش ہے, اور پانی سے زندگی ہے, کدھر یہ پانی. میں مجھے اس پانی کو دیکھنا ہے, مجھے اس پانی سے ملاقات کرنا ہے اور وہ سب. تو ظاہر ہے اس کو کوئی کیا سمجھائے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن ایسا آیا کہ جیسے ایک موج آئی, اور ہوتا ہے نا کہ جب وہ سرفیس نیئر دا سرفیس ہوتی ہے, تو ایک موج آئی اور اس موج نے اس مچھلی کو اچھال کر سمندر سے نکال کر ساحل پہ پھینک دیا. تو اب جب وہ تڑپنا شروع ہوئی وہاں پر اس پانی سے نکلنے کے بعد, تو اسے پتا چلا کہ وہ پانی تو ہر وقت میرے ساتھ تھا. یہ انہوں نے اس طریقے سے اس کو سمجھایا, اس چیز کو, کہ ہم لوگوں کی مثال جو ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے بارے میں ایسی ہے کہ جیسے ایک مچھلی یہ پوچھتی پھرے گا پانی کہاں ہے. اکثر اوقات یعنی اس میں جو مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں, لیکن جو شاید زیادہ ایک مضبوط وجہ ہے کہ کہیں پلورل کہیں سنگولر, خدا نے اپنے ریفرنس میں سنگولر والا ریفرنس بہت کم جگہوں پر ہے, تو پلورل والا ریفرنس ان مقامات کے لیے ہے جہاں پر تجلیات اور اسماء کی کثرت ہے, اور واحد والا جو صیغہ ہے وہ ان مقامات کے لیے ہے کہ جہاں پر وحدت بالکل یعنی غالب ہے, کہہ لیں. نہیں وحدت ہے, لیکن وحدت اپنے آپ کو ظاہر کیسے کر رہی ہے, یعنی جیسے دیکھیں مثال کے طور پر جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا, اسماء جو ہیں ان کی ایک ہیرارکی بنتی ہے, کہ ہمارے لیول پر جب اسما آتے ہیں نا تو ان میں کثرت ہے, پلورلزم ہے اسما. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس مقام پر زیادہ تر جب ورڈ استعمال ہوگا نا تو وہ خدا پلورل استعمال کرے گا اپنے لیے. یا اسی طریقے سے یہ بات بھی تفسیروں میں تفاسیر میں بیان کی جاتی ہے کہ عالم مطلب ملک و ملکوت میں جو امر الہی ہے وہ اوسات یعنی وسائط اور ذرائع کے ذریعے سے انجام پاتا ہے, یعنی ملائکہ ہیں یا اور مدبرات الامور بہت ساری جگہوں پر ہے نا, والصافات صفاً فالزاجرات زجراً. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ تمام کے تمام کام اس کے بیچ میں لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, تو وہاں پر جب خدا اپنا ذکر کرے گا تو ان کو بھی شامل کر کے کرے گا.
جہاں
प्लूरल हाँ वो तो प्लूरल है ना, प्लूरल है हाँ, नहीं इन्ना इन्नी नहीं है, यानी जैसे एक मकाम रसूल खुदा की रिसालत का है कि जहां पर सिंगुलर आया है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीन अलहक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ये पूरा सिंगुलर है। तो इसका ये एक यानी ये अगर आप इस फर्क को समझ रहे हैं तो ये रसूल खुदा की रसालत की अजमत का बहुत बहुत बड़ा हुआ है कि रसूल खुदा की रसालत कहाँ से चली है, उस मकाम से, उस मकाम से वाबस्ता है।
एक सवाल मेरा है, जिन बाज़ सिफात इलाही की तजल्ली हमारे मासूमीन के जरिए से हो रही है, वो उनकी कैफियत क्या, वो मिसले सिफात खुदा है या मसले खुदा सिफात खुदा है?
मिसल तो कोई भी नहीं है ना, जब ये बात डिनाई हो गई लैसा कमिसले ही शय, हाँ तो वो नहीं है ना, यानी कि जो भी है वो फिर मसल व नूर ही में आ रहा है, क्योंकि क्योंकि मिसल का मतलब यह है कि अगर आपने उस चीज को ग्रैस्प कर लिया तो आप असल तक असल को पकड़ लिया आपने, ये मुमकिन नहीं है। और इसके अंदर और बहुत सारे मकामात हैं जाहिर है कि जिनका जिक्र ऐसे करना मुनासिब नहीं है। जी
कह रहे थे जब खुदा इतने शहरक से करीब है तो फिर ये शर्रिल वसवासिल खन्नास और ये सारी चीजें फिर क्या ये मसाइल?
देखें हमारे साथ जो हमारी जिंदगी में है ना वो दो चीजें हमारे साथ चल रही हैं, एक हकीकत है जो हमारी शहरक से ज़्यादा करीब है या मेरे दिल से भी ज़्यादा मुझसे करीब है, और एक मेरी माहियात हैं, ठीक है, यानी मेरी फॉर्म्स शेप्स बॉडी ये सब की सब चीज़ें। अगर मैं इस जगह तक आ जाता हूँ कि अपनी माहियात के असर से पीछा छुड़ा लूँ और टोटली फोकस हो जाऊँ अपनी हकीकत पर, तो ना कोई वसवसा है, ना कोई शर है, ना कोई परेशानी है, ना कोई मसला है। जितना ज्यादा मैं अपनी माहियात में उलझा रहूंगा या उसकी तरफ मुतवज्जे रहूंगा उतना ही हकीकत से दूर होऊंगा और उतना ही वसवास और अशरार मुझ पर असरअंदाज होंगे, ये उसूल है। और ये इंसान का इम्तिहान है, ये हमारा इम्तिहान है, ठीक है, यानी ये कि अगर मैं अपनी माहियात में फंसा रहा, यानी वही जैसे आसान अल्फाज में बदन, तो फिर मैं असफलुस्साफिलीन में हूं, और अगर मैं अपनी हकीकत से जुड़ गया तो मैं आलालीन में हूं। इसके लिए आपको ना मरने की जरूरत है ना दुनिया से जाने की जरूरत है, ये सब का सब यही पॉसिबल है।
लेकिन चाहे मैं जो भी है वो जुड़ा रहे ना जुड़ा रहे, लेकिन वो जो है कि हबलुल वरीद वो तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ना,
हाँ,
तो
बिल्कुल है ना? बिल्कुल है।
तो उसमें फिर ये क्यों हो रहा है कि अगर मैं जुड़ा रहूं तो ही होगा?
उसकी वजह यह है कि खुदा का जो ताल्लुक है इंसान के साथ खास तौर से, वो इंसान के इख्तियार और इंतखाब पर मबनी है, दीगर मखलूकात की तरह नहीं है।
समझ में आ रहा है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि फिर अगर वो असफलुस्साफिलीन वाला तो खुदा हबलुल वरीद नहीं है?
है, ठीक है, लेकिन उसके लिए फायदा नहीं है ना, यानी जैसे कि कयामत में जब लिकाल्लाह की बात है तो लिकाल्लाह तो सबके लिए, काफिर के लिए भी है, मुशरिक के लिए भी है, मुनाफ सबके लिए, लेकिन वो लिकाल्लाह फकत और फकत मोमिन के लिए प्लेजेंट है, बाकियों के लिए तकलीफ दे, क्यों तकलीफ दे? इसलिए कि जब वो उस हकीकत को देखेंगे तो उन्हें फिर वो पूरी उनकी जिंदगी सामने आ जाएगी ना कि ये हकीकत हमेशा से तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे तुमसे इतनी नज़दीक थी और तुम उससे गाफिल थे और तुमने कभी उसकी तरफ तवज्जो करने की कोशिश और ज़हमत ही गवारा नहीं की। तो इंसान का मसला बहुत यूनिक है, ठीक है, यानी इंसान को खुदा ने तमाम चीज़ें दे दी हैं, इल्म दे दिया है, वसाइल दे दिए हैं, इक्विपमेंट दे दिए हैं, लेकिन बाकी उनको इस्तेमाल करते हुए बनाना इंसान को सब कुछ खुद है। ठीक है, ये हमारी, और जो एक जुमला में बहुत ज्यादा आजकल खास तौर से दोहरा रहा होता हूं मुख्तलिफ जगहों पे, कि हमें जो शैतान ने सबसे ज्यादा जिस धोखे में फंसाया हुआ है ना, वो ये है कि मेरी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी जितनी भी जिम्मेदारी है ना, वो खुदा की है या खुदा के नुमाइंदों की है। मेरा काम बस ये है कि यहाँ आके मैं बस इधर उधर ऊपर ऊपर के नमाज रोजे कर लूँ, फला फला कर लूँ, और फिर उसके बाद मेरा हक खुदा पे वाजिब हो जाता है कि खुदा जो है ना वो मेरी जिंदगी को मीठा बनाए रखे, और इसके ज्यादा मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना अपनी जात के हवाले से, ना माशरे के हवाले से, ना दूसरे इंसानों के, कुछ नहीं। तो इसी वजह से तो इतनी मुसीबत खड़ी हो गई है।
बस मैं एक ही बात ये कह रहा था कि हब्लुल वरीद बारे में कि खुदा तो करीब है हमसे, लेकिन
हम करीब नहीं। यानी खुदा करीब है लेकिन हम करीब नहीं है, और हमें करीब खुद होना है। जी اللهم صل على محمد وآل محمد.